नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और सुदृढ़ करने पर चर्चा करेंगे, साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति स्टब के सम्मान में दोपहर भोज का भी आयोजन करेंगे। श्री स्टब 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति स्टब को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। भारत के प्रमुख भू राजनीति और भू अर्थशास्त्रीय सम्मेलन रायसीना संवाद का 11वां संस्करण आज नई दिल्ली में शुरू होगा। 3 दिवसीय सम्मेलन में वैश्विक नेता, नीति निर्माता, विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और रणनीतिक सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। वर्ष 2026 का विषय है संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति, जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज कर्नाटक दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे बेलगावी जिले के श्री वीरभद्रेश्वर मंदिर में राजगोपुरम कल शोरारण और महाकुंभाभिषेक समारोह के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। 10 राज्यों में 37 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होगा और परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रविंद रेड्डी ने कल रात नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में श्री रेड्डी ने राज्य की बढ़ती प्रशासनिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए तेलंगाना में अतिरिक्त भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारियों की तैनाती का अनुरोध किया है। पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हो गया है। अमरीकी सैन्य पनडुब्बी ने गोल तट के पास ईरानी युद्धपोत आयरिस देना पर हमला किया। इस हमले में अब तक 78 लोगों के घायल होने की खबर है। 80 शव बरामद करने की पुष्टि की गई है। ये घटना श्रीलंका के दक्षिण में लगभग 40 समुद्री मील दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में घटी। आयरिस देना हाल ही में विशाखापत्तनम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 में भाग लेने के बाद स्वदेश लौट रहा था। उधर अमरीकी केंद्रीय कमान के कमांडर एडमिरल ब्रेट कूपर ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर जानकारी देते हुए कहा कि 100 घंटे से भी कम समय में लगभग 2000 लक्ष्यों पर हमले किए गए हैं।
इसराइल रक्षा बल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चरों और अन्य प्रणालियों को भी निशाना बनाया। इसराइली वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो ईरान की वायु क्षमताओं पर हमले जारी रखे हुए है और वायु रक्षा प्रणालियों का संचालन करने वाले ईरानी सैनिकों को मार गिराया गया है। इसराइल की वायुसेना ने बैरूत में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। उधर अमरीका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी के अनुसार 28 फरवरी से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में ईरान में अब तक 1097 नागरिक मारे जा चुके हैं। एजेंसी ने कहा है कि मृतकों 181 बच्चे 10 वर्ष से कम आयु के थे। इसके अलावा घायल नागरिकों की संख्या 5402 हो गई है, जिसमें 100 बच्चे भी हैं। संस्था ने यह भी बताया है कि पिछले 24 घंटों में ही कम से कम 104 हमले हुए हैं। इन हमलों में सैन्य अड्डों, चिकित्सा केंद्रों और आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
अमरीकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान का समर्थन किया है। कल रात सीनेटरों ने कांग्रेस की अनुमति के बिना सैन्य अभियान को रोकने के उद्देश्य से लाए गए द्वितलीय प्रस्ताव को रोकने के लिए मतदान किया। सीनेट ने 47 के मुकाबले 53 मतों से प्रस्ताव को आगे न बढ़ाने का फैसला किया, जो मुख्य रूप से पार्टी लाइन के अनुरूप था। पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता के बीच एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। एयर इंडिया ने कहा है कि प्रभावित यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी यात्रा की तारीख बदल सकते हैं या टिकट रद्द करने की स्थिति में पूरा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा इस वर्ष 28 फरवरी या उससे पहले की गई सभी कन्फर्म बुकिंग्स पर लागू होगी। नेपाल में संसदीय चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। ये चुनाव पिछले वर्ष सितंबर में युवा नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के बाद पहला आम चुनाव है। उन प्रदर्शनों में 77 लोगों की मौत हुई थी और सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। आईसीसी T20 विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज भारत और इंग्लैंड के बीच होगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से ये मैच खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में कल रात न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।